¡Oh, madre, ये 71 नंबर का श्लोक है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं, एक ज्ञानी तो ऐसा है जनक जैसा कि कोई भी बाहर का भोग्य पदार्थ मिल जाए, कितनी भी महत्वपूर्ण चीज मिल जाए, वो चीजें उनके अंदर विकार पैदा नहीं करती। ये समझो कि उसने इतनी गहराई में डुबकी लगाई है कि कुछ असर नहीं होता वहां पे। जीवन संपन्न है, बाहर से भोगियों जैसा दिखता है लेकिन अंदर से योगियों से भी ज्यादा आगे पहुंचा हुआ है। अनंत ऐश्वर्य के बीच में रहता है लेकिन एक क्षण के लिए भी ईश्वर से तार नहीं टूटता। ईश्वर के स्वरूप के साथ में इतनी एकता है कि बाहर के पदार्थ का कोई महत्व नहीं रह गया। जैसे कोई जगा हुआ व्यक्ति होता है, उसके लिए स्वप्न के पदार्थ का कोई महत्व नहीं है। स्वप्न के पदार्थों के लिए न पाने की चेष्टा है, न उनके खोने का दुख है, उनके प्रति कोई स्प्रिया नहीं है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के लोग हैं, उसकी इसमें चर्चा करें, वो भी ज्ञानी है, भक्त हैं, ज्ञानी हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा। यदि थोड़ी नचिकेता को और प्रहलाद को आप तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा दोनों का चिंतन करें, दोनों के सामने सब कुछ देने वाला उपस्थित है। नचिकेता की चित्त की स्थिति आपको, आप हैरान हो गए जब ब्रह्मा जी के सामने हिरण्यकश्यपु ने यह कहा कि मैं मरूं नहीं। उसने कहा यह बात तो असंभव है, लेकिन नचिकेता को यमराज ने यह कहा, यावत इच्छसी, हे नचिकेता, जब तक तुम चाहो तब तक तुम जियो। अब विचारणीय बात क्या है यहां पे? नचिकेता को वही मिल रहा है, वही देने वाला वही दे रहा है नचिकेता को, जो नचिकेता चाहता नहीं है। और मनुष्य जो नहीं चाहता, वो यदि मनुष्य को मिले उसी का नाम दुख है। दुख और क्या है? जो आप चाहें यदि वो आपको मिल जाए तो सुख है, लेकिन जो वो नहीं चाहता वो उसको मिल रहा है। लेकिन विचार करो कि नचिकेता वो नहीं चाहता जिसको दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है। कितनी दुनिया का हर व्यक्ति जिस चीज को चाहता है, जिसको पाकर के वो अपने को कृत्य कृत्य और धन्य समझता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को ऐसी चीजें स्वाभाविक रूप से मिलती हैं। विहाय कामान, कैसी दृष्टि नचिकेता की होगी? इतने बड़े सुखों में भी उसको दुख दिखाई देने लग गया, इतने बड़े सुखों में दुख बहुत गहराई से छुपाया हुआ होता है। वो छुपा हुआ यदि दुख मालूम पड़ जाए, भोजन में थोड़ा सा जहर मिला मालूम पड़ जाए, सारी भोजन की थाली ठुकरा देते हैं। विहाय कामान यह सर्वान, नचिकेता ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر چاہت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. کون؟ یمراج. لیکن آپ یہ سمجھ لو, ہر چاہت جو پورا کرنے کی بات یم کہتے ہیں, وہ واستوک میں جو نچکیتا کی چاہت ہے اس چاہت کو دبانے کی ایک کوشش ہے. واستوک جو اس کی چاہت ہے, جس کے لیے وہ یہاں سے وہاں پہنچا. لیکن یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ واستوک چاہت نہیں ہو سکتی جو دب جائے, وہ دبی نہیں. اور پھر یمراج نے کہا کہ تمہارے جیسے آدمی کو پا کے تو میں دھنیہ ہو گیا. یہ بڑی مہتوپورن بات ہے. جیون میں پاترتا حاصل کرنا یہ بہت مہتوپورن ہے. اپنے کو پاتر بن کر کے دکھانا کہ میں پاتر ہوں, میں بھکت ہوں, میں الانا ہوں, میں فلانا ہوں, ان باتوں کا کوئی مہتو نہیں ہے. پاترتا تو وہ ہے جہاں پانی اپنے آپ ٹھہر جائے. اس نے کہا ہے تمہارے جیسے آدمی کو پا کر کے میں دھنیا ہو گیا. آج کہاں تمہارے جیسے آدمی ملتے ہیں. بیہا یا کامان یا سربان, جو جو مانگا جا سکتا ہے ان سب کو چھوڑ دینا. اچھا, کامنا جب چھوٹتی ہے اس کا پرینام کیا ہوتا ہے؟ جیون میں نشپریتا آتی ہے, کرورتا نہیں آتی, نشپریتا آتی ہے. نشپریتا کا ارتھ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سکھدیو جی جا رہے تھے تو بیاس جی نے پیچھے سے آواز لگائی. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, آپ نے بھی کبھی آواز لگائی ہوگی. نہیں لگائی, یا تو کتنے پنڈت آواز ہی لگاتے رہتے ہیں. پترے تی تنمے تیا ترو بنے دوہ تم سرو بھوت ہردیم منی مان دوس میں. کہتے ہیں بیاس کے سور ایسے تھے جن سوروں میں پتا کا منہ اور ماں کی ممتا موجود تھی. کتنا بھی کٹھور ویکتی ہو اس کو پتا کا منہ اور ماں کی ممتا باندھ دیتی ہے, ایک لحاظ کرتا ہے ویکتی. لیکن سکھدیو تک نہ پتا کا موہ پہنچا نہ ماں کی ممتا پہنچی. جہاں ممتا اور موہ نہیں پہنچتے اسی کا نام ہوتا ہے نشپریہ. اس کا نام ہے نشپریتا. تو وہایا کامان یا سروان پمانش شرط نشپریہ, جہاں اتنی گہرائی میں یا اتھوا اتنی اونچائی میں چلا جاتا ہے کہ جہاں موہ اور ممتا نہیں پہنچتے. کیونکہ یہ موہ اور ممتا کے مگرمچھ اتنے تکڑے ہیں, بہت گہرائی میں پہنچے ہوئے جیپ کو پکڑ کے لے آتے ہیں, باہر کھینچ لیتے ہیں. اتنے تکڑے مگرمچھ ہیں یہ. لیکن سکھدیو اتنی گہرائی میں اتر گئے ہیں, بیاس کے سور پیڑوں نے سن لیے, جڑ وستوؤں نے سن لیے, لیکن وہ چیتن نہیں سن پایا. کون؟ کیونکہ وہ مہا چیتن میں کھو گیا تھا. جب تک مہا چیتن میں نہیں کھوئے گا ویکتی, تب تک یہ سب سنائی دے گا. یہ کولاہل, یہ پریشانی, یہ سب کچھ رہے گا. اتنی گہرائی میں اتر گیا. تو نشپریہ شبد کا ارتھ ہو گیا جہاں نہ موہ پہنچ سکتا اور نہ ممتا پہنچ سکتی. اور جہاں موہ اور ممتا سے ویکتی پار ہوا تو سمجھ لو کہ سادھنا کی سیڑھی کافی اونچی چڑھ چکا ہے. اچھا نشپریا ہو گیا نشپریا. اچھا آگے کا ذرا دیکھ لیجئے تھوڑا سا. نرممو شری کرشن کہتے ہیں ہے پارتھ ایک بات آپ کو میں سمجھاؤں. یہ جو چرچا چل رہی ہے آج ارجن یدھ کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ سمجھ لو یدھ منشیہ کے چت کی سب سے وکرت دشا ہے. ارجن نے بھی جب بھیشم پتا کی چھاتی پہ باڑ مارے تو آنکھیں بند کر دی. اس نے کہا آنکھیں کیوں بند کرتا ہے؟ اس نے کہا ایسا کام کر رہا ہوں جو دیکھنے لائق نہیں ہے لیکن ویوہار کی ایسی مجبوریاں ہیں. ارجن نے کہا انکشن اپنی بارش نہیں یا بلا دیونی نہیں چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہے. آنکھ بند کر دیتا تھا جب بھیشم کو باڑ مارتا تھا. اس کی باتیں بھی یاد آتی تھی وہ بھی باتیں یاد آتی تھی. اس بوڑھے آدمی کی انگلیاں پکڑ کے میں چلتا تھا اسی آدمی کی چھاتی پہ باڑ مار رہا ہوں. اس یدھ سے جو پراپت ہوگا وہ ایشوریہ ہے. اس لیے مہابھارت کے سورگاروہن پرسنگ کے اندر جو ہے نا جب یدھشٹھر کے پاس میں دوارکا سے ارجن لوٹتے ہیں یدھشٹھر کہتے ہیں چلو کرشن چلے گئے ابھی چلو رہنے لائق نہیں جگہ ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے سنگھرش سے پایا ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے گئے. آپ لوگ جاتے ہو تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ ناشتہ واسطہ باندھ لیتے ہو لیکن سورگاروہن کے پرسنگ میں کوئی ناشتہ واسطہ نہیں باندھا ان لوگوں نے. ایسی چلتی ہے. ایک ایک چیز اتنے سنگھرش سے پائی تھی ابھیمنیو کو گنوا کے پائی کرن کی بلی دے کر کے پائی. کہنے کا تاتپری کیا ہے؟ جیون میں تم کچھ بھی پاؤ کتنے سنگھرش سے بھی پاؤ کتنی طاقت سے بھی پاؤ لیکن انتم میں اس کو ساتھ میں لے جانے کا کوئی اپائے نہیں ہے. یہی سورگاروہن پرسنگ کا تاتپری ہے. کچھ بھی اس میں ساتھ میں نہیں لے جا سکتے. ہستیناپور کا سنگھاسن ساتھ میں جانے لائق ہے؟ لے جاؤ گے اس کو ساتھ میں؟ اس نے کہا یار اتنے سنگھرش سے پایا. شاستر یدی اٹھا کے دیکھو جیون کو یدی پڑھ کے دیکھو تو جتنے سنگھرش سے پانڈووں نے ہستیناپور کو پایا شاید ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اتنے سنگھرش سے ہی کچھ پاتے ہیں. ہمارا سنگھرش کا طریقہ الگ ہے لیکن جاتے سمے کی استھتی دونوں کی ایک جیسی ہے. نہ پانڈو کچھ لے کے گئے سورگاروہن کے پرسنگ میں اور نہ ہم لے کے جاتے. اتنی بات ہے کہ وہ جیوت چھوڑ کے چلے گئے اور ہم لوگوں سے کوئی چھڑائے گا؟ چھڑائے گا کیا؟ جتنا مال مسالہ ہے اس سے تمہارے اس کے بیچ میں سے اٹھا دے گا بات ختم ہو گئی. گھر میں تالا لگا بھی جائے گا جتنا کمایا ومایا ہے تو ذرا سنبھل کے رکھنا ہوگا. اس لیے شری کرشن کہہ رہے ہیں نشپریتا جو ہے کیونکہ युद्ध से जो भी मिलेगा वो ऐश्वर्य है और उसे साथ में ले जाया नहीं जा सकता। लेकिन ये युद्ध के बीच में इस व्यक्ति ने जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछ लिया तो दोनों की मंजिलें भिन्न हैं। युद्ध की मंजिल ऐश्वर्य है, जीत और हार है, और स्थित प्रज्ञ में ज्ञान की जो मंजिल है वो मुक्ति है। ये युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति और एकदम परमार्थ की गहराइयों की बातें क्यों पूछ रहा है? ये क्यों महात्मा बनने की बात कर रहा है? ये तो अभी इसके द्वारा कसाईयों जैसे काम होने हैं। भीष्म को मरना है, कर्ण को मरना है, कितने निरपराध सैनिकों की हत्या होनी है, और वो आदमी स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश कर रहा है, स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना चाहता है, इसका राज क्या है, इसका कारण क्या है। अब ये श्लोक यदि पढ़ो, यहां तो छोड़ने की बात है, और अर्जुन के चित्त की स्थिति ऐसी है कि कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा युद्ध छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। युद्ध छोड़ना पाप है, युद्ध करना पुण्य है। क्यों? दो ही समस्या है, हतो वा प्राप्सि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महिम, कृष्ण ने कहा दूसरे अध्याय में। देखो, युद्ध में ज्यादा संभावना मरने की है, मर गए तो स्वर्ग चले जाओगे, और जीत गए तो इस धरती का सुख भोगो। अर्जुन ने कहा तुमको नहीं लगता यार, ये जितने भोग हैं ये खून से सने हुए हैं, रुधिर प्रदग्धान, पढ़ा है गीता? गीता तो बहुत पढ़ी हो आप लोगों ने। ये खून से सने हुए भोग हैं सब। कृष्ण ने कहा सारे भोगी खून से सने हुए हैं, ऐसा थोड़ा ही है। युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ किया, इतने इतने राजा महाराजाओं को मार करके लाया, वो तो सब खून से सने हुए नहीं थे क्या? क्या तुम्हारे चित्त की स्थिति ऐसी हो गई कि अब हिंसा में प्रवृत्ति न हो? ऐसा नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं निष्प्रियता होनी चाहिए, और आगे कह दिया निर्ममो। हे अर्जुन, किसी चीज को कभी मेरी मत समझो। बड़ी मजेदार बात है। सारी मैंने दुनिया की सारी साधनाओं का एक ही निचोड़ है, सत्य स्वीकार करना। ऐसा नहीं है कि मेरा है और फिर मुझे समझना है कि मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है और फिर मुझे समझना है कि ये मेरा है, मत समझ, क्योंकि ये तेरा है ही नहीं। और बुद्धि जब ये निश्चय कर लेती है मेरा नहीं है, तो धीरे धीरे उस वस्तु से साधक का राग खत्म होने लगता है, सुख की अपेक्षा खत्म हो जाती है। जब तक उसके साथ में ममत्व जुड़ा हुआ है, तब तक उस व्यक्ति और उस वस्तु के प्रति हमारे जीवन में सुख की अपेक्षा बनी रहती है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले ये स्वीकार कर निर्ममो, कुछ तेरा नहीं है, तेरे से पहले किसी और का था। और स्वर्गारोहण के प्रसंग ने तो महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा करके, और जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। और देखो दुनिया की चाल कैसी है, द्रौपदी जी भी साथ में जाती हैं। पहले द्रौपदी गिरती है, युधिष्ठिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, युधिष्ठिर ने साधना की पराकाष्ठा यही है। यदि आप कर्म करके अपने पूरे परिवार को प्रेम से पालते हो और आपका चित्त शुद्ध हो गया तो निश्चित है कि आपके चित्त में अंतिम में युधिष्ठिर जैसी निष्प्रियता आ जाएगी। स्वर्गारोहण के प्रसंग में द्रौपदी गिर जाती है, भीम चिल्लाता है, युधिष्ठिर ने कहा आप पीछे मुड़के देखने जैसा कुछ नहीं है, अब यहां से संसार नहीं लौटा जा सकता है। लेकिन इतनी सच्चाई को स्वीकार करना, हमें तो ऐसा लगता है कि हम कभी भी संसार पकड़ सकते हैं, आपको नहीं हमको भी ऐसा लगता है। बड़े बड़े महात्मा नहीं छोड़ पाते, बहुत कठिन है ये चित्त में स्वीकार करना। यद्यपि उसने दूसरे से लिया है, यद्यपि उसको दूसरे का मिला है, लेकिन ममता के ताने बाने में कुछ ऐसे उलझ जाता है कि जैसा ये मेरा ही हो गया। युधिष्ठिर ने कहा पीछे मुड़ के देखने लायक कुछ नहीं है, भीम को बड़ा बुरा लगा, ये गरम गरम रोटी बना के खिलाती थी, सबका ख्याल रखती थी, आज गिर गई पीछे देखा नहीं मुड़ करके, क्योंकि अब पीछे मुड़ करके देख के कुछ होने वाला नहीं है, वो गई है, मर गई हो। वहां पर थोड़ा अच्छा प्रसंग है, कभी जरूर पढ़िएगा महाभारत में स्वर्गारोहण का प्रसंग। तो अंतिम में जब अर्जुन गिरता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम था, किसका, युधिष्ठिर जी महाराज का। भीम ने कहा देखो इसके बल पे आपने राजसूय यज्ञ किया, इसके बल पर आपकी यश, आपकी कीर्ति, इसने फैलाई आपकी यश और कीर्ति, यह तड़प तड़प करके मर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा यहीं रह गई यश, यहीं रह गई कीर्ति, बस आगे बढ़ गया। फिर भीम गिरता है, युधिष्ठिर जी अकेले रह जाते हैं। आप लोग धर्म साथ में, कुत्ता आपने सुना हो, वो सब बातों से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन तात्पर्य यह है कि कितना संघर्ष, कितनी भी कुछ जद्दोजहद से हम प्राप्त करें, लेकिन उस मार्ग पर कुछ साथ नहीं जाता है, एक संस्कारों की वजह से। परमार्थ को समझने पर कृष्ण के संग का ये तो प्रभाव है अर्जुन के ऊपर, जब कर्ण का रथ जमीन पर धस जाता है और कर्ण कहता है कि मत बाण चलाओ, ये धर्म, ये युद्ध है, ये उद्यम में उचित नहीं है। अर्जुन के हाथ रुक जाते हैं। यद्यपि उसके पुत्र को मारा था उसने, कहीं तो सत्संग के संस्कार जीवन में काम करते हैं महाराज। कृष्ण के संग का प्रभाव है, नहीं तो आदमी मौके की तलाश। ये कृष्ण का संग है और कर्ण जैसे अर्जुन के जैसा ही ओजस्वी, समझदार, और वो व्यक्ति सात महारथियों के साथ में अभिमन्यु को मार डालता है। ये कुसंग का प्रभाव है। देख लीजिए, ऐसी विषम परिस्थितियों में धर्म को याद रखना अर्जुन का। बोले नहीं, इसको नहीं मारते, इसका इसके पास हथियार नहीं है, क्योंकि साथ में कृष्ण थे, उसका एक प्रभाव था। बुद्धि में ये बातें अपने आप आने लग गई। दूसरी तरफ कर्ण, उसने नहीं सोचा मेरे पुत्र जैसा है ये, अकेला पड़ गया, सात महारथी हैं। वो दुर्योधन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया। इसलिए जीवन में संग जो है बड़ा खतरनाक होता है। अहम मुनि नाम वचनम श्रृणोमि, श्रृणोत्यसो यवनस्य वाक्यम, न तस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, और जबरदस्त ऐसा ही है। इसलिए भगवान कहते हैं निष्प्रिया निर्ममो। युधिष्ठिर ने कहा, कहां पहले हस्तिनापुर में रहते थे, फिर कृष्ण की कृपा से मिला, मैं दानव ने बना दिया, अर्जुन वहां से आए, मन उठ गया। ऐसा तो नहीं है कि वो छोड़ने के लिए युधिष्ठिर को किसी ने प्रेरित किया हो। धृतराष्ट्र को तो छुड़ाने के लिए बहुत उपदेश किया, पहले किसने उपदेश किया? विदुर ने किया, विदुर के कहने पर नहीं छोड़ा उसने। फिर सनक सुजात को बुलाया गया, महाभारत के हिसाब से सनक सुजातीम ग्रंथ है, बड़ा जबरदस्त है। नहीं कुछ अपना, फिर भी पकड़े हुए हैं। और ये आदमी को किसी ने बोला नहीं छोड़ने के लिए, लेकिन उसके मन में बात आ गई नहीं, पता नहीं क्यों अपना मान बैठे हम तो इसको। निर्ममो, एक ममता धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है, एक समझ में आने लगता है कि एक ऐसा प्रकृति का व्यवहार है कि उसको एक व्यवहार चलाना है, और हमारे माध्यम से जो व्यवहार चलाना है वो कुदरत व्यवहार चलाती है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कहते हैं निर्ममो निरहंकार। फिर अहंकार कहां? अहंकार के लिए कुछ ममता चाहिए, पद का अहंकार हो, प्रतिष्ठा का अहंकार हो, ऐश्वर्य का अहंकार हो, किसी ने कोई चीज तो चाहिए ना अहंकार। बोले तुमको किस बात का अहंकार है भाई, ऐसा बोलते हैं ना। तो जिस आदमी की ममता पूरी तरह से निवृत्त हो चुकी हो, नचिकेता को कभी अहंकार नहीं हो सकता, बुद्ध को कभी अहंकार नहीं हो सकता, प्रहलाद को कभी अहंकार नहीं हो सकता, लेकिन ध्रुव को भयंकर अहंकार हो गया। ईश्वर की कृपा से मिला हुआ जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के प्रति ममत्व बुद्धि हो गई, मेरा है। और एक बड़ा विलक्षण आपको एक बात बताऊं, बहुत अहंकारी थे ध्रुव। आपको बुरा लगेगा लेकिन एक सच्ची बात बता रहा हूं आपको। यद्यपि वो उसका जो भाई था, क्या नाम था उसका, उत्तम से प्रेम नहीं करता था, जब गंधर्वों ने उसे मारा, उसने निरपराध गंधर्वों की लाशों पे लाशें बिछा दी। उसने कहा एक राजा के भाई को तुमने मार दिया, और भाई वो जो फूटी आंखों न सुहाता हो। ये तो सारी लड़ाई कहीं ना कहीं अहंकार की लड़ाई थी ना, इसलिए वहां तक पहुंचना बहुत कठिन काम है, बड़ा ऐसा रास्ता है, चिकना है, कांटों भरा है, कोई कोई पहुंच पाता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। कोई कोई है ऐसा जो पहुंच जाता है ये सारी रुकावटें बाधा दूर करके, तो निर्ममो निरहंकार। अच्छा, अहंकार नहीं होता जब प्रतिपल परमात्मा की शक्ति का बोध होता है। आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी महाराज लंका जला करके आए वहां से, वहां लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उलट पुलट लंका जारी, उलट पुलट। यहां पे ये बात समझना कि हनुमान जी को राम के प्रभाव का प्रतिपल बोध है। क्या? राम के प्रभाव का प्रतिपल बोध है। और जिस व्यक्ति को राम के प्रभाव का प्रतिपल बोध होगा, उस व्यक्ति के अंदर अभिमान की गुंजाइश नहीं है। कैसे गुंजाइश होगी उसके अंदर अभिमान की? जब कहते हैं वहां से आए तो भगवान रामचंद्र जी ने बड़ी प्रशंसा किया उनकी। उन्होंने कहा देखो महाराज, ऐसा है बात, हमने लंका नहीं जलाई है। बोले क्या हुआ फिर नहीं जलाई? बोले आपने जलवाई है। बड़ा मुश्किल हो गया भाई, आपने जितना कहा उतना हुआ वहां, हमारी चलती तो हम सही करें आपसे, हम तो सीता जी को उठा के ले आते। जितने आदमी साधना ऊंची करता है उतना उसको पता लगता है कि आदमी तो एक यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है, लेकिन जितने वो सत्य के करीब पहुंचता है। अर्जुन ने कहा ना, क्या कुछ समझ में नहीं आई बात? युधिष्ठिर से कहता है कि कैसा आदमी था, हमको तो ठग लिया उसने, सारा काम अपने आप किया और सारा श्रेय मुझे दे दिया। और जब पता लगा, सोचा कि जाकर के शुक्रिया अदा करके आऊं, तो गजब की बात हो गई। निराहंकार अर्जुन को कृष्ण के महत्व का बोध कृष्ण के जाने के बाद हुआ। और जैसे ही अर्जुन अहंकार रहित हुआ, कृष्ण की कृपा से मिला हुआ जो ऐश्वर्य था, उस ऐश्वर्य के प्रति अर्जुन के चित्त में वैराग्य पैदा हो गया। किसी ने अर्जुन को वैराग्य के लिए उपदेश नहीं दिया। अर्जुन को डायबिटीज नहीं थी, कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई पत्नी खराब नहीं थी उसकी, सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, अर्जुन के वैराग्य के मूल में बोध है, इसलिए जितने काम किए अब कृष्ण को श्रेय देना चाहता है, लेकिन दे तो दे कैसे दे, रहे नहीं। इसलिए भागवत में मैंने आपको बताया एक शब्द का प्रयोग उसने किया, वंचितो अहम महाराज। हे महाराज, अभी तक मुझे जिंदगी में एक ही व्यक्ति ने ठगा, बस मैं प्रत्येक ठग को सजा दे सकता हूं, लेकिन अब मुसीबत यह हो गई कि वो ठग बचा ही नहीं इधर रहा है, क्या करूंगा। जिस राजपाट ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भीष्म, जो पिता से भी श्रेष्ठ थे, द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए सारे पाप किए, कृपाचार्य, कौरवों के पक्ष में होते हुए भी दिल से आशीर्वाद अर्जुन को दिया, इन सब को मार करके जो राज्य मिला, उस राज्य में सुख एक क्षण के लिए भी सुख नहीं दिखा। इसका मतलब यह है, पद और प्रतिष्ठा में सुख है तभी तक जब तक तुम्हारे अंदर कहीं सूक्ष्म में ममता और अहंकार छुपा हुआ है। यह अहंकार ही संसार में रस पैदा करता है। और भाष्यकार ने लिखा, जहां रस दिखता है वहां आदमी की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। ये तो बात है, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्जुन की उस ऐश्वर्य के प्रति ममता गई, अहंकार गया, रुकने के लिए है क्या? दो ही चीजें हैं जो हमें संसार से बांध के रखती हैं, संसार से पकड़ के रखती हैं, या तो ममता है या तो अहंकार है। न ममता है न अहंकार है, तभी तो बुद्ध संसार में जीते हुए भी संसार में नहीं जीते थे। मीरा क्यों कहती थी कि मैंने जग लागे खारो, क्यों कहती थी? क्योंकि संसार में मिठास पैदा करने वाली वासना चित्त में है ही नहीं। संसार में मिठास करने वाली वासना यदि चित्त में होती है, हर जगह स्वाद है, हर जगह आनंद है, तड़फन है। कभी देखा आपने? देखा नहीं कभी? कभी जिनको तमाकू खाने की आदत होती है, उनको आप रसगुल्ले का भंडारा खिलाओ, खीर का भंडारा खिलाओ, और जैसे ही उठेंगे खा करके इधर उधर झांकने लगेंगे, क्या क्या बात है। और वो उसका स्वाद ऐसा है कि तुम यदि खाओ तो तुम्हारा खाया हुआ बाहर निकल जाए। अभ्यास है ये, जहर पीने का अभ्यास देखो कैसा है, और बड़ा आनंद से खाता है। जिसको अभ्यास नहीं है वो व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता। यही तो है बात, यही संदर्भ। तो संसार में रस पैदा करने वाली दो चीजें हैं, ममता और अहंकार। जब आदमी स्वरूप में स्थित होता है, सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित के प्रति कोई ममता नहीं है, देखो इन बादलों की हमारे प्रति कोई ममता नहीं है, लेकिन जब हमको भयंकर गर्मी लगती है तो ये आकाश से पानी की फुहारें बरसा देते हैं। जो हमसे ममता रखते हैं यदि वो सामर्थ्यहीन हैं, उनकी ममता भी हमारे लिए क्या कर सकती है? और जो ममता न रखे और सामर्थ्यवान है, तो परमात्मा सामर्थ्यवान है, उसकी किसी के प्रति ममता नहीं, उसको अहंकार नहीं, स्वाभाविक सब कुछ हो रहा है। हवाएं चलती हैं, अपने ढंग से चलती हैं। हां, उपनिषद इतना इशारा जरूर करते हैं कि इन चीजों को परमात्मा के अस्तित्व का बोध है। मौत, हवा, सूर्य, इनको कहीं ना कहीं परमात्मा के अस्तित्व की जानकारी है, इसलिए इनके कार्य में नियमितता देखी जाती है। यही तो है, आदमी क्या करता है? देखो सवाल एक बात होती है, हम प्राय करके हिंदू जो साधक होते हैं ना, वो भटक जाते हैं, वो व्यक्तियों के पीछे इतने पड़ जाते हैं, और उनका दुर्भाग्य यही होता है कि उनके सामने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने कृष्ण का व्यक्तित्व फीका पड़ जाता है। आप सोचो जिन व्यक्तियों को तुम पूछते हो, उन लोगों ने दुनिया तो छोड़ी, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद पकड़ा क्या? क्या पाया? वही सब डरे डराई लोग हैं, ऐसा मत समझना। जिनके यहां तुम चरण और दंडवत करके आते हो, वो भी इनकम टैक्स वालों से डरते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जरूर। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने आपके चित्त में कभी भी ईश्वर के महत्व में कमी नहीं आनी चाहिए। पूज्य भाव, आदर का भाव, सबके प्रति वो आदर का भाव, लेकिन भजन का भाव तो केवल परमात्मा के प्रति ही होना चाहिए। भजा तो परमात्मा को ही जाना चाहिए, क्योंकि भजन करने लायक वही है। हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, हे रघुकुल श्रोमणी भक्ति दो। सबने राम से कुछ मांगा, लेकिन हनुमान के चित्त में राम को छोड़कर के और किसी से उनकी ममता नहीं जुड़ी। राम को छोड़कर के किसी दूसरी चीज को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी है। कहते हैं बड़ी कीमती माला भी दी थी, किसने? सीता जी ने दी थी, दिया होगा, दिया माला दी। कहते हैं उसने वो भी माला तोड़ के देखी। यदि आप परमात्मा के प्रभाव को, परमात्मा के स्वभाव को समझते हैं, तो परमात्मा के सिवाय आपके जीवन में ममत्व का भाव किसी और के प्रति उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए इस्लाम में भी कभी देखते हैं, वो लोग भी कहते हैं एक खुदा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तात्पर्य उसका क्या है? ये जीवन की एक सच्चाई है, और असली वेदांत तो यही है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह जो परमात्मा है उस परमात्मा का महत्व जनक ने समझा, ममता निवृत्त हो गई। याज्ञवल्क ने समझा, मोह की निवृत्ति हो गई। देखो याज्ञवल्क की एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं, दो तीन मिनट बाकी हैं। उसके अपनी पत्नी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं था, अपनी पत्नी के प्रति इतना आदर का भाव था, इतना सम्मान का भाव था। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता, वो परमात्मा को क्या आदर और क्या सम्मान देगा। लेकिन उसने एक बात कही, उसने कहा रिश्तों का कोई उद्देश्य होता है और रिश्तों की कोई सीमा होती है। अब तो ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से भी थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। मैत्रेय को भी लगा कि बिल्कुल बात सही है कि आखिरकार कब तक यह सब है। लेकिन ये जो बातें उत्पन्न होती हैं, ये बातें उत्पन्न होती हैं मनुष्य के विवेक के माध्यम से। इसलिए देख लीजिए, सुन लीजिए श्लोक अभी बिल्कुल। विहाय कामान या सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय, इतना सब का अर्थ बता दिया आपको। विहाय कामान, ये कामान का अर्थ होता है जिस जिस को मांगा जा सकता है, वो बता दिए सब। अब उन सबको जैसे नचिकेता ने छोड़ दिया सबको, विहाय कामान जिसकी कामना की जा सकती है सब छोड़ दिया। और चरति निष्प्रिय, निष्प्रिय होकर के विचरण करते हैं, कहीं लाख लपेट नहीं, चल दिए फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, वही तो निष्प्रियता है। अच्छा, पुमांस चरत निष्प्रिय, बिर ममो, बहुत विचार करते हैं, विचार करने के बाद उन्हें ये महसूस हो जाता है, उन्हें ये अनुभूति हो जाती है कि कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में जिसे मैं कह सकूं ये मेरी है। निर्मम हो गया। अच्छा, ये कोई झूठी बात तो नहीं है, किसको कहोगे मेरी है? जिसको हम मेरी कहते हैं हमारी आंखों के सामने छिन जाती है, हमारी आंखों के सामने चली जाती है, या तो हम चले जाते हैं या तो वो चली जाती हैं। इसका मतलब मेरी नहीं है, निर्ममो। और फिर अहंकार किस बात का, किस बात का अहंकार है? हनुमान जी वहां से सब काम करके आ गए, उन्होंने कहा कुछ बात नहीं है, इतना पता लगा कि तुमने सब करवाया। कभी पद्मभूषण, पद्म विभूषण ये सब पुरस्कार मिलते हैं, परम वीर चक्र मिलता है, तो सैनिक को मिलता है कि टैंक को मिलता है? सैनिक को मिलता है ना। हाँ, तो यही बात है। वो तो हम तो तुम्हारे टैंक हैं बस, हमारे माध्यम से तुम जहां चाहो गोला दाग देते हो, डरते गोले से। लेकिन ये गोले किसने बनाए, धागे किसने, सब मजा तो उसका है, बिना उसके ये सब बेकार हैं। तो इसलिए निर्ममो निरहंकार, इतनी बात जब अहंकार चला जाता है इस बात को समझने, परमात्मा के महत्व को समझने से, तब श्री कृष्ण कहते हैं शांतिम अधिगच्छति, फिर जीवन में शांति मिलती है। ममता और अहंकार वाले व्यक्ति के अंदर शांति का आभास होता है, शांति नहीं होती है। बस एक ही श्लोक बच गया कल के लिए।